हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है यहाँ इस्कॉन के श्री जगन्नाथ मंदिर में रविवार के इस कार्यक्रम में। आप में से कई लोग शायद पहली बार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ समय पर देखकर। ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, इसके लिए कई उपदेश या कई निर्देश भगवान ने शास्त्रों में कई स्थानों पर दिए हैं। इसे कैसे चलाना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। जैसे जब हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलती है, उसमें लिखा होता है कि इसे कैसे चलाना है। अगर हम उसके अनुसार चलाते हैं तो फिर वो अच्छा चलता है, लेकिन अगर हम लोग अपने मन से चलाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं चलता। इसी तरह हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, इसको चलाने के लिए भगवान ने शास्त्रों के रूप में मैनुअल दी है। जैसा कहा गया, अगर हम वैसा चलाते हैं तो सुखी रहते हैं, और अगर नहीं चलाते हैं तो दुखी रहते हैं। इस जगत में लोगों के दुख का एक ही कारण है, उन्होंने भगवान के द्वारा कही गई बात को स्वीकारा नहीं, अपने मन से अपना जीवन चलाने का प्रयास किया और केवल दुखों को और कष्टों को अनुभव किया। इसीलिए जब हम लोग आध्यात्मिक स्थान में आए, जैसे कि ये मंदिर, हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या बताया, क्या चाहते हैं भगवान हमसे, उसको हम जानने का प्रयास करें और अपना जीवन बदलें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए और फिर वही उपदेश भगवान ने उद्धव को दिए, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो भगवान वही ज्ञान उद्धव को देते हैं। बहुत सा ज्ञान दिया भगवान ने उद्धव को, और फिर भगवान ने उद्धव से कहा कि अब मैं अपनी लीला समाप्त करके वापस जा रहा हूं, और जैसे ही मैं जाऊंगा इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाएगा, कलयुग का प्रवेश होगा। इस समय में लोग धर्म को अधर्म मानेंगे और अधर्म को धर्म मानेंगे, इसीलिए उद्धव अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे भक्त हो, और एक भक्त के लिए ऐसी अवस्था में रहना, कलयुग का समय, धर्म को अधर्म माना जाता है, या कहना चाहिए कि सारे धर्म के सिद्धांतों को तोड़ा जाता है। इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति जितना धर्म के सिद्धांतों को तोड़ता है उसको उतना ऊंचा पद दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो बहुत प्रगति कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म से परे जा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है, इसीलिए प्रगति कर रहा है। ये प्रगति नहीं है, हमने अपनी सभ्यता को त्यागा है प्रगति के नाम पर, लेकिन किसको स्वीकार किया है? केवल दुखों और कष्टों को। क्या मिला है हमें इस प्रगति से? केवल दुख, केवल कष्ट। मानव मूल्यों को खो बैठे हैं हम लोग, एक दूसरे से प्रेम करना भूल गए हैं हम लोग, एक दूसरे पर विश्वास रखना छोड़ दिया है हमने, परिवारों में एक रहना छोड़ दिया है, टूट गए हैं परिवार। इसीलिए सभ्यता नहीं है। बच्चों को आज स्कूल में रामायण महाभारत नहीं सिखाई जाती। बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे धन कमाओ, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाओ, कितना भोग करो, आनंद लो, कौन सा ऐसा स्कूल है जहां महाभारत रामायण सिखाया जा रहा है? आजकल बच्चों को ये महाभारत और रामायण केवल कार्टून में दिखाया जाता है, जिसके कारण वे लोग भगवान को भगवान नहीं केवल एक कार्टून मानते हैं, क्योंकि जो कार्टून में देखते हैं उसको सत्य नहीं मानते। हम सब ने भी बचपन में थोड़े बहुत कार्टून तो देखे होंगे, वैसे तो हम लोग अभी भी देखते हैं बहुत सारे, बचपन में बहुत देखे होंगे बहुत सारे कार्टून, अभी याद नहीं आ रहे हैं अलग अलग नाम आजकल क्या चलते हैं कार्टून्स, कौन सा है हा? छोटा भीम, भीम तो बहुत बड़ा था उसको छोटा कर दिया, छोटा भीम। तो बच्चे छोटा भीम देखते हैं, उनको लगता है छोटा भीम कोई कार्टून है, और देख देख कर भूल जाते हैं कि सही में असल में एक भीम था। उनको एक काल्पनिक कथाएं लगने लगती हैं, और यही हुआ है हमारी सभ्यता का नाश, इसी तरह हुआ है। अंग्रेज जब हम पर राज्य करना चाहते थे तो उन्होंने एक अध्ययन किया भारत का, और उन्होंने भारत में एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था लॉर्ड मैक्यूले, और लॉर्ड मैक्यूले ने फरवरी 1835 में ब्रिटिश असेंबली में, जहां पर लंदन में वो लोग कानून बनाते हैं, वहां पर एक उन्होंने वाक्य कहा। उन्होंने कहा, ये लिखा हुआ वाक्य है, आज भी ब्रिटिश असेंबली में मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति दो चीजों में है, एक उसकी सभ्यता और दूसरा उसका जो शिक्षण पद्धति है, जो उनको पढ़ाया जाता है। अगर हमें भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो इन दो चीजों को तोड़ना होगा। तो क्या किया उन्होंने, हमारे जितने शास्त्र थे उनको अपने लोगों से अनुवाद करवाया, और उनके लोगों ने अनुवाद ऐसा किया जिससे कभी विश्वास नहीं हो शास्त्रों पर। इसीलिए आज बालकों से पूछा जाता है, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि कोई बंदर बात करता था, कोई बंदर उड़ता था, समुद्र के ऊपर से कूद गया, ऐसा कभी होता है? बालक कहते हैं नहीं। तो फिर ये भीम हनुमान ये कल्पना है। तो इसीलिए अपनी सभ्यता से अलग जाकर हम लोगों ने भगवान को कल्पना बना दिया है, एक मानसिक कल्पना। लेकिन शास्त्र, भगवान ये कल्पना नहीं है, ये इतिहास है, ये सत्य घटनाएं हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि कभी कोई बंदर बात नहीं कर सकता, कभी कोई बंदर उड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारी कल्पना के परे है, हमने देखा नहीं। जैसे एक चींटी, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, मान लीजिए आज रविवार का कार्यक्रम चींटियों का हो रहा होगा कहीं पर, इस भूमि के नीचे कहीं चींटियां रविवार का कार्यक्रम कर रही होंगी, और उसमें एक बुद्धिमान चींटी व्यासासन पर बैठकर ये बता रही होगी कि जानते हो, हम जहां पर हैं उसके ऊपर एक मनुष्य नाम का प्राणी रहता है, वो एक बार में इतना खाता है कि हम लोग 10 साल में नहीं खा सकते। चींटियां मानेंगी? लेकिन हम लोग खाते हैं ना, हम जितना एक बार में खाते हैं चींटियों के लिए 10 साल के लिए बहुत है, पता नहीं शायद उससे भी ज्यादा, जीवन भर के लिए बहुत होगा। तो जब ये चींटी कहेगी, कोई स्वीकार नहीं करे। इसीलिए हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमारी बुद्धि अभी उतनी नहीं है, लेकिन ये सत्य है। इसीलिए शास्त्रों का पालन जीवन में अनिवार्य है। तो उद्धव को भगवान बताने लगे कि अब ये समय ठीक नहीं है उद्धव, अब तुम्हें जाना चाहिए, और जाने से पहले पूर्ण रूप से अपना मन मुझ में लगाओ। यही उपदेश उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को दिया, मन मना भगवत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन सफल होना चाहते हो, क्या करना है सफलता के लिए? मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, कुछ नहीं कर सकते कम से कम नमस्कार करो। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर प्रवचन में कहते हैं कि भगवान कह रहे कम से कम इतना तो करो, नमस्कार करो बस। और यही उपदेश उन्होंने उद्धव को दिया, उद्धव अपना मन मुझ में लगा, जिन चीजों में आसक्ति है उद्धव उसको त्यागो, संन्यास ग्रहण करो, सब चीजों से विरक्ति होनी चाहिए। उद्धव ने इसको सुना, उद्धव ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, संन्यास लेना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है उन लोगों के लिए जिनकी संतानें हैं, जिनके परिवार हैं, जिनको आसक्ति है, क्या ये संभव है संन्यास लेना? बहुत सुंदर प्रश्न है उद्धव का। हम सबके लिए भी यही है ना, कभी कभी हमारे मन में आता है कि ये लोग भगवा वस्त्र पहनने वाले लोग बहुत विरक्ति वैराग्य की बात करते हैं, कभी घर में आके देखें तब पता चलेगा वैराग्य का, है ना? बच्चों को संभालना पड़ता है, रात को बच्चा रोता है, दिन में रोता है, और पता नहीं क्या क्या, खैर आप लोग ज्यादा जानते हैं अनुभव। तो इसीलिए उद्धव ने भी यही प्रश्न भगवान से किया कि आप कह रहे हैं संन्यास लेना है, विरक्ति लेनी है, लेकिन ये संभव है? हम लोग तो आसक्त हैं, उद्धव कहते हैं, हम तो संतान में, परिवार में, समाज में आसक्त हैं, कैसे छोड़ सकते हैं इन चीजों को? ये उद्धव का प्रश्न हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान इसके उत्तर के द्वारा ये सिखलाने वाले हैं कि कैसे परिवार में रहते हुए, संतानों के साथ रहते हुए, समाज में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए उद्धव ने पूछा। उद्धव को आवश्यकता नहीं थी, उद्धव भगवान के बड़े महान भक्त हैं और पहले से भगवान के साथ हैं, तो उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान मैं कैसे आपको प्राप्त करूंगा। ये तो उद्धव ने हमारे लिए पूछा कि उन लोगों के लिए जो आसक्त हैं, और भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। तो भगवान ने सुना, उद्धव ने कहा कि ये कैसे संभव है, आप संन्यास की बात करते हैं, हम कैसे सारा वैराग्य ले सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, जहां हो, जिस स्थिति में हो, अपना मन मुझ में लगाना है, और उसको लगाने की कला सीखनी है। जिन चीजों को तुम देख रहे हो उनसे सीखना प्रारंभ करो, भक्ति का मार्ग सीखो, हरेक वस्तु से, हरेक चीज से, फिर किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस संदर्भ में भगवान एक इतिहास बताते हैं। आज का प्रवचन हम उस इतिहास के विषय में कहने वाले हैं। तो भगवान एक इतिहास बताते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव से कि ऋषि मुनियों ने एक इतिहास दिया है उद्धव, इस विषय में जो तुम्हारा प्रश्न है, इस विषय में। और क्या इतिहास है? वो कहते हैं ये इतिहास है ययाति के पुत्र महाराज यदु का। यदु महाराज राजा थे पृथ्वी के, और एक समय एक ब्राह्मण से मिले, तो उनके बीच जो संवाद हुआ वो इतिहास को भगवान दोहरा रहे हैं। आप सोच लीजिए, जिस इतिहास की बात भगवान करें स्वयं, और वो भी कब, जब बस अब भगवान जाने वाले हैं। भगवान ने उद्धव को कह दिया कि 7 दिन बाद ये जो द्वारिका देख रहे हो ये सब पानी में डूब जाएगी, ये तुम्हें दिखाई नहीं देगी उद्धव, 7 दिन बाद समाप्त तो हो जाएगा सब। तो उस समय उपदेश दे रहे हैं उद्धव को, अर्थात जाने से पहले अपने अंतिम उपदेशों में भगवान उस इतिहास को कह रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण होगा वो इतिहास। भगवान कहते हैं कि यदु महाराज मिले एक ब्राह्मण से, अवधूत ब्राह्मण, क्योंकि यदु महाराज बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, वो पहचान गए कि ये कोई महान व्यक्ति है। हालांकि वो ऐसे ही रह रहा था एक पागल व्यक्ति की तरह, लेकिन यदु महाराज ने पहचान लिया। देखिए, एक भक्त को पहचानने के लिए, एक वैष्णव को पहचानने के लिए हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए, अन्यथा हम वैष्णवों को पहचान नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा। वैष्णव क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, हम उनको अपने स्तर पर जब देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है गलत है। लेकिन भगवान के भक्त क्योंकि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनके सारे कार्य शुद्ध भक्ति है। अर्जुन ने अपने गुरु के विरुद्ध तीर चलाया, वो शुद्ध भक्ति है। हालांकि समाज में अपने गुरु के प्रति आंख उठाकर देखना भी अपराध माना जाता है। समाज में ही क्यों, शास्त्रों में लिखा है गुरु की पूजा करनी चाहिए, शास्त्र कहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्य उपासना, कि अर्जुन ज्ञान का लक्षण है गुरु की पूजा करना। तो जब ज्ञान का लक्षण गुरु की पूजा है, वही अर्जुन वही भगवद गीता सुनकर अपने ही गुरु पर तीर चला रहा है, वो शुद्ध भक्ति है। क्यों, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। अर्जुन की आंखों में तो आंसू आ रहे थे जब वो तीर चला रहा था भीष्म देव पर, जब वो तीर चला रहा था द्रोणाचार्य पर, अर्जुन की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये भगवान की योजना थी और इसीलिए ये शुद्ध भक्ति है। तो जो भी कार्य किया जाए, तो जब भगवान के भक्त कोई कार्य करते, हमारी दृष्टि से गलत हो सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप किया है, अपने गुरु की हत्या की है, अपने वरिष्ठों की हत्या की है, कर्ण को धोखे से मारा है अर्जुन ने, पाप किया है, अनर्थ किया है, ये हमारी दृष्टि है। लेकिन भगवान की दृष्टि शुद्ध भक्ति है। वो ये बड़ी विचित्र बात है ना, पाप करे कोई और शुद्ध भक्ति, अनर्थ करे, अधर्म करे और शुद्ध भक्ति, क्योंकि धर्म की परिभाषा हमने नहीं सीखी। धर्म की एक ही परिभाषा है, धर्म उसे कहा जाता है जो भगवान ने बना दिया, जो भगवान के मुख से आया वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। सरल परिभाषा। इसीलिए अगर भगवान चाहते थे कि कर्ण को मारा जाए, अर्जुन ने मारा, हालांकि अर्जुन रुक गया था, जिस समय कर्ण के रथ का पहिया फंस गया, अर्जुन ने तीर नहीं चलाया, अर्जुन ने धर्म का पालन किया, अर्जुन ने तीर नहीं चलाया, लेकिन भगवान ने कहा मारो, और तब अर्जुन ने मारा, वो शुद्ध भक्ति है, वो धर्म है। इस चीज को समझना चाहिए, भगवान की स्थिति को समझना चाहिए। भगवान ने जो कहा वो धर्म है, ये हमारी बुद्धि से हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम भगवान को अपने स्तर पर अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ने जो कहा वो धर्म है। इसीलिए अपने मन से धर्म को नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम बतला रहे थे, हमने सभ्यता छोड़ दी अपनी, बच्चों को स्कूलों में महाभारत रामायण पढ़ाना छोड़ दिया। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को, कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता है बच्चों को, रामायण महाभारत कोई नहीं। क्यों, कहते हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो सभी धर्मों को मानते हैं तो धर्म के ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? धर्म निरपेक्षता के नाम पर नास्तिक हो गए हैं, इसीलिए किसी स्कूल में धर्म की बात नहीं होती। तो बच्चा जो छोटा सा पौधे के समान है, उसको आप धर्म नहीं सिखलाओगे तो बड़ा होकर अगर वो पाप करेगा तो उसकी क्या गलती। आगे आने वाले समाज को हम लोग पापी बना रहे हैं, अधर्मी बना रहे हैं धर्म निरपेक्षता के नाम पर। सच्ची धर्म निरपेक्षता है सभी धर्मों को समान मानना, सबको समान आदर देना, यह सच्ची धर्म निरपेक्षता। ये नहीं कि हम धर्म को निकाल दें अपने जीवन से। बच्चों को आजकल फिल्म के गाने सिखाए जाते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारत जैसे देश में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बच्चा स्कूल से कोई गाना सीख कर आता है, किसी हीरो की तरह डांस करता है, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सोचते मेरे बच्चे का जीवन सफल हो गया। बच्चा अगर भगवत गीता श्लोक बोले तब जीवन सफल है, उस श्लोक को जिए तब जीवन सफल है, रामचंद्र जी के चरित्र को पढ़े तब जीवन सफल है, कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करे तब जीवन सफल है। फिल्म के गाने गाकर कौन सा जीवन सफल होने वाला है, क्या मिलने वाला है? वैदिक साहित्य में, वैदिक शास्त्रों के अनुसार गाने बजाने वालों को शूद्र माना जाता है, लेकिन इस कलयुग में उन्हीं लोगों को सर पर चढ़ाया जाता है। हम लोग यहां भगवान की कथा करते हैं, सुनने के लिए कुछ लोग आते हैं। आज अगर हम यहां अनाउंसमेंट कर दें कल दोपहर 12 बजे कोई फिल्म का बहुत बड़ा स्टार यहां आने वाला है, आप तो आएंगे ही, आपके साथ 100-200 लोगों को हर एक व्यक्ति लेकर आएगा, यहां खड़े रहने की जगह नहीं होगी, पुलिस लगानी पड़ेगी। ये कलयुग है, भगवान को देखने, भगवान के दर्शन, भगवान को सुनने थोड़े लोग, और ऐसे लोग जिनको वैदिक साहित्य के अनुसार शूद्र मान, नाचना गाना किसके लिए था? ये आप पूछिए अपने अपने घरों में जाके अपने माता पिताओं से जो वृद्ध हो चुके हैं, कौन करते थे ये कार्य? नाचने गाने वालों को बाहर रखा जाता था, समाज में नहीं रखते थे। हां, जो लोग भगवान की टोली बनाकर जाते थे, भगवान के भजन गाकर, उनको बहुत मान सम्मान मिलता था, उनको समाज में बहुत मान सम्मान था, और अच्छे अच्छे परिवार के लोग ये टोली बनाया करते थे। ये हमें लगता है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले होता होगा, अच्छे अच्छे परिवार के लोग, ऐसे नहीं कि जिनके पास कुछ करने के लिए, वो टोली बनाते थे, घर घर जाते थे, गली गली जाते थे, भगवान का नाम गाते थे, और उनको लोग आदर देते थे। वो जब आते थे तो उनके पांव पर पानी डाला जाता था, उनके चरणों को स्पर्श किया जाता था। हमने खुद देखा है, कुछ वर्ष पहले हम बंगाल में थे, हम लोग तो कई भक्त थे, हम लोग बस से जा रहे थे मायापुर कलकत्ता से, एक गांव में बस खराब हो गई हमारी, और बस वाले ने कहा बहुत समय लगेगा, तो हम लोग सब नीचे उतरे, और भक्तों के लिए जब खाली हो करना क्या है, खाली तो कभी रहते नहीं भक्त, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने कीर्तन शुरू किया, तो सब कीर्तन करने लगे, तो आसपास में गांव के सभी लोग आकर खड़े हो गए, कीर्तन देख रहे हैं, और हम लोगों को कुछ इतना, हम तो कीर्तन करते रहते हैं, हम लोग तो, हमें कुछ इतना विशेष नहीं लगा, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो सब देख रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद कहा गया कि बस ठीक हो गई, तो हम लोग सब चढ़ने लगे, तो हमने देखा कि वहां जो महिलाएं थी अपनी गोद में बच्चों को लाई थी, तो गोद के बच्चों को लाकर उस मिट्टी में लिटाने लगी, बोले कि यहां भक्तों ने कीर्तन किया है, बड़ी महत्वपूर्ण, उसको लिटा। हमें देखकर आंसू आए आंख में कि ये सभ्यता है हमारी। प्रभुपाद कीर्तन करते थे, जुहू में लोग जाकर पुलिस कंप्लेन करते थे, ये सभ्यता है शहरों की। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं एक प्रवचन में, भगवान आए हैं आपके घर पर और आप कीर्तन होए तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, दिस इज न्यूसेंस। कहां गई वो सभ्यता? तो इसीलिए उन लोगों को हमने महत्व दे दिया। तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हम लोग आज? शूद्रों का कार्य, इसीलिए ये आवश्यक है। तो खैर, भगवान ने उद्धव से ये कहा कि चीजों को देखकर सीखो, और उसमें इतिहास कहने लगे यदु महाराज का कि जब अवधूत से मिले वो पहचान गए कि बहुत महान भक्त है, और फिर उस समय उन्होंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने कहा आप कौन हैं? ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, भोग के लिए, आनंद के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपको इसकी कोई रुचि नहीं है, आप ऐसे ही घूम रहे हैं विरक्त, कोई इच्छा नहीं आपके हृदय में, है कौन आप और कहां से आपके अंदर ये ज्ञान आया? और उस समय ये जो अवधूत ब्राह्मण है ये कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे यदु महाराज, मैं, मेरे जो अंदर ज्ञान है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ये मैंने 24 गुरुओं से सीखा है। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, या 24 गुरुओं से मैंने अपनी बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया है। और इन 24 गुरुओं को मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनिए और इससे आपको पता चलेगा कि मेरी जो विरक्ति, जो आसक्ति चली गई है वो किस कारण से गई है। तो एक एक करके उन्होंने 24 गुरुओं के नाम लिए। इनमें बहुत से गुरु आएंगे। आज से हम लोग ये जो प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं, हर रविवार 24 गुरुओं का वर्णन करेंगे जब तक 24 पूरे नहीं हो जाते हैं, जिसमें पृथ्वी आती है, हवा आती है, जल आता है। एक वेश्या से उन्होंने कुछ सीखा जिसका नाम था पिंगला। एक तीर बनाने वाले से उन्होंने कुछ सीखा जो तीर बनाता है। एक पक्षी से उन्होंने कुछ सीख लिया। तो इन सबको अपना गुरु बनाया। तो क्या क्या सीखा हरेक से, ये अब वो बता रहे हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो गुण हम सीखेंगे, ये गुण हमें भक्ति में कृष्ण की ओर बड़ी तीव्रता से ले जाएंगे। तो पहले गुरु का वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पहली गुरु हैं ये पृथ्वी जिस पर आप खड़े हो। पृथ्वी का क्या गुण है? पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता। बड़ी सहनशील है पृथ्वी, सब कुछ सहन कर लेती है। तो सहन करना, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, आत्म साक्षात्कारी होना चाहता है, उसको सभी स्थितियों में सहनशील बनना चाहिए, पृथ्वी की तरह सहनशील। तो सहनशीलता क्या है? कई प्रकार की होती है सहनशीलता। शास्त्रों में प्रमुखतः चार प्रकार की सहनशीलताओं को दिया है। एक सहनशीलता वेगों की सहनशीलता। जब इच्छाएं बड़ी तीव्र हो जाती हैं, हम लोग बस करना है, कुछ करना है, तो कर बैठते हैं, उसको सहन करना। बोलने की, जैसे कभी बोलने की इच्छा होती है ना, रुक नहीं पाते हैं। या फिर द्वंद, जैसे ठंडी गर्मी, हार जीत, इसको द्वंद कहते हैं, इनको सहन करना। सुख दुख, सुख और दुख दोनों को सहन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अब कोई व्यक्ति कह सकता है दुख तो ठीक है, सुख को क्या सहन करना है? दरअसल जीवन में दुख सहन करना तो कठिन है ही, क्योंकि जब दुख होता है व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, कभी कभी वो स्थिति से बाहर चला जाता है, कभी कुछ गलत चीजें लेने लगता है। जैसे हम लोग समाज में देखते हैं, लोग दुख सहन नहीं कर पाते, शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, या फिर कभी कभी व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है, या कभी दुख इतना बढ़ जाता है तो फिर आत्महत्या कर लेता है। तो दुख सहन करना तो कष्टदायक है, कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है सुख सहन करना। सुख सहन करना मतलब जब सुख आए तो व्यक्ति अहंकारी नहीं बने, सहन करना सीखे। क्योंकि जब सुख आता है हम लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं। ईसाई धर्म में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था सेंट पॉल। उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है। वो कहते हैं कि जो अहंकार है ये पतन की शुरुआत है। अगर अहंकार आ गया तो निश्चित पतन होगा। तो इसलिए सुख को सहन करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये सहनशीलता क्या है? कभी कभी लोग सोचते हैं सहन करना मतलब दबा के रखना है ना, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से को पकड़ के रखना, दिखाना नहीं, दिखाना नहीं, वो सहनशीलता। वो सच्ची सहनशीलता नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है आपने दबा के रखा है। सच्ची सहनशीलता है गुस्सा आए ही नहीं, वो सच्ची सहनशीलता। जैसे एक समय सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषि मुनि पुराणों पर चर्चा कर रहे थे, तो अलग अलग पुराण में अलग अलग चीजें दी गई हैं। किसी में कहा गया शिवजी महान है, किसी में कहा गया ब्रह्मा महान है, तो किसी में कहा गया विष्णु महान है। तो चर्चा होने लग गई तीनों कौन महान है। तो भृगु मुनि को चुना गया भृगु मुनि से कहा आप निश्चित कीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप निश्चित कीजिए कौन महान है। तो भृगु मुनि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, अपने ही पिता के पास। अब स्वाभाविक है कि जब ये वैदिक सभ्यता है कि जब पुत्र काफी समय बाद पिता के सामने आता है तो स्वाभाविक है उसको कुछ अच्छे शब्द कहने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भृगु मुनि ऐसे ही खड़े रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा पुत्र आया है। लेकिन देखा तो पुत्र कुछ नहीं कर रहा, ना आदर दे रहा है, ना कुछ गुणगान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कैसा पुत्र है ये, इतने समय बाद आया, पांव वाव नहीं छूरा, दंडवत प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। तो क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने दबा लिया उस क्रोध को कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पुत्र ही है ना। ऐसा होता है ना, पुत्र कुछ करता है गुस्सा आता है, लेकिन आदमी चुप रहे, ठीक है क्या करे, कर्म फूटे हैं, ऐसा पुत्र मिला है जो भी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोच लिया, क्या करे ऐसा पुत्र, ऐसे भृगु मुनि तो बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने दबाया, क्रोध आया, लेकिन वो जो क्रोध था उनके चेहरे पर दिखने लगा। आप देखिए ये जो चेहरा है ना हमारा, हमारा मतलब हम सबका, हमारा नहीं, ये जो हम सबका चेहरा है, ये हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसका दर्पण है, शीशा है। जैसे जब आप शीशा देखते हो, आप शीशे में हंसोगे तो आप हंसते हुए दिखाई दोगे, रोओगे तो रोते हुए दिखाई दोगे। तो चेहरा ऐसा ही है, अंदर जो होता है, जैसे व्यक्ति बड़ी चिंता में है तो वो मुस्कुराएगा भी तो पता चलेगा ये ठीक नहीं है, है ना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो भृगु मुनि ने देख लिया, तो भृगु मुनि ने कहा ये तो फेल हो गए, पास नहीं हुए। सबकी परीक्षा लेने जा रहे थे ना भृगु मुनि, उनको निश्चित करना था कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भले उन्होंने वश में किया लेकिन क्रोध आ गया। भृगु मुनि ने कहे फेल हो गए, शिव जी के पास गए। शिव जी ने दूर से देखा, मेरा भाई आया है, ब्रह्मा जी के दोनों पुत्र हैं, तो मेरा भाई आया, भागते हुए आए। शिव जी उस समय पार्वती जी के साथ बैठे थे, पार्वती को छोड़े भागते हुए आए, भाई आया है गले से लगाने के लिए। और जैसे ही पास आए भृगु मुनि ने कहा दूर खड़े रहो, इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से, ये सब क्या क्या शरीर पर लगा के रखते हो। भृगु मुनि कह रहे हैं उनको, शिव जी को, छूना मत मुझे, दूर रहो एकदम। अब बताइए शिव जी को कोई ऐसा, वो भी पत्नी के सामने, अकेले में कहा होता तो शायद शिव जी सहन कर जाते हैं ना, पत्नी के सामने अपमान कर दिया तो कैसे सहन कर। शिव जी ने तो अपना त्रिशूल निकाल लिया मारने के, पार्वती ने पकड़ा, क्या कर रहे हो भाई है आपका। तो शिव जी फिर थोड़ा वश में आ कि ठीक है ठीक है, स्वाभाविक है ना, क्रोध आ ही जाएगा। अकेले होते कुछ कहा होता तो शिव जी को त्रिशूल साइड में, ठीक है कोई बात। तो शिव जी को क्रोध आ गया, वो भी फेल हो गए। भृगु मुनि ने कहा ये भी सहन, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब भृगु मुनि गए भगवान विष्णु के पास। उस समय लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा कर रही थी, जैसे आप यहां पर इस चित्र में ऊपर देख सकते हैं, लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। और भगवान ऐसे लेटे हुए थे आंखें बंद किए हुए, और भृगु मुनि गए और सीधे जाकर उन्होंने उनकी छाती पर लात मार दी जोर से, बहुत बड़ा अपमान। देखिए कुछ कहा होता, चलिए शिव जी को तो शब्दों से कहा था, ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने मन से अपराध किया, कुछ कहा नहीं था, मन से अपराध कर दिया, कि कुछ दिया कहा नहीं, उनको आदर नहीं दिया, मन से अपराध हो गया। शिव जी के प्रति शब्दों से अपराध कर दिया, मनसा वाचा शब्दों से कर दिया, बोल दिया दूर खड़े रहो बदबू आती है तुम्हारे पास से ये वो। और इधर तो विष्णु सीधा लात ही मार दी, चलो थप्पड़ भी मारा होता तो कुछ ठीक था, लात मारना तो एकदम ही अपमान की बात है ना। हम लोगों को कभी किसी को मारना हो तो थोड़ा प्रेम से भी मारना है तो थप्पड़ अप्पड़ मारते, लात मारना तो एकदम निम्न तरह का अपमान है। लात मार दी, वो भी छाती पर सीधे। तो जैसे ही उन्होंने लात मारी, भगवान उठकर खड़े हो गए, भगवान आए उठकर बैठे, हाथ जोड़ा उनके सामने और कहा कि क्षमा कर दीजिए, मुझसे जरूर कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ होगा कि आपने ये दंड दिया, तो जो भी अपराध हुआ क्षमा कीजिए, उससे बड़ा अपराध मुझसे ये हो गया कि ये जो मेरी छाती है जिस पर आपने अपने अपने चरणों को मारा, ये वज्र के समान है मेरी छाती। वज्र मतलब बहुत कठोर है और आपके पांव में जरूर दर्द हो रहा होगा, लाइए मैं उसको सहला देता हूं। तो उनके पांव को हाथ में लेकर वो सहलाने लगे कि आपने ये पांव मेरी छाती पर मारा, मेरी छाती तो वज्र के समान है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपको दर्द हुआ होगा, मैं आपको सहला देता। भृगु मुनि ये देखकर स्तब्ध रह गए, कोई शब्द नहीं निकले उनके मुख से, वो सोच नहीं पाए मैं करूं क्या, क्योंकि अभी दो जगह महान व्यक्तियों को देखकर आए थे। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, शिव जी तो त्रिशूल लेकर मारने के लिए आए, लेकिन यहां विष्णु उनके ही चरणों को पकड़कर सहला रहे कि गलती हो गई, मेरा इतनी छाती इतनी कठोर है, आपके पांव में लग गया हो। स्तब्ध, कुछ बोल नहीं पाए, कोई शब्द नहीं निकले उनके मुख से, हिल भी नहीं पाए, उनको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। तो जब वापस आए तो उस समय उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बताया कि सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है। क्यों भगवान विष्णु है ये तो आप सब जानेंगे। तो क्या योग्यता देखी कि ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा भड़काने का प्रयास कर रहा है, आप शांत रहें। प्रभुपाद लिखते हैं ये सच्ची सहिष्णुता है। सहनशीलता का अर्थ है वो व्यक्ति सहनशील कहला सकता है जो ऐसी स्थिति में जहां आपको भड़काया जा रहा हो तब भी शांत बना रहे, ये सच्ची सहनशीलता। तो देखिए भृगु मुनि कितना उन्होंने अपराध किया लेकिन भगवान क्षमा कर। ऐसे एक साधु के बारे में कहा जाता है, एक साधु था बड़ा शांत था। तो एक व्यक्ति ने कहा, वो रोज उसके घर के सामने से नदी में स्नान करने जाता था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि कल कुछ भी हो जाए इसकी सारी शांतता जो है मैं समाप्त करूंगा, क्या करूंगा देखते हैं। तो जब सुबह आने लगा तो बाहर गए और जितने बुरे शब्द वो सोच सकते थे वो साधु को बोल दिए, जितने भी। और साधु मुस्कुराकर चले गए स्नान करने के लिए। इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। आप सोचिए, आप कहीं से जा रहे हो, अचानक कोई अपने घर के बाहर आकर आपको सारे जितने आप सोच सकते हो उतने बुरे शब्द कह दे, आप क्या करोगे, शांत रहोगे? हाँ या ना, कितने लोग शांत रहे, मुस्कुराकर चले जाएंगे, कुछ लगे मुस्कुरा। तो ये व्यक्ति तो हार गया, इसने कहा हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए इसको नहा के आने दो। तो नहा के आया वापस, तो नहा कर आ रहे थे तो उसने ऊपर से जो सारा घर का कूड़ा था उसके ऊपर डाल दिया, गंदा पानी कूड़ा सब। अभी अभी नहाकर आ रहे नदी से साधु, ऊपर से सारा पानी डाल दिया। साधु वापस चले गए, फिर से नहाकर आए, इसने कहा छोड़ूंगा नहीं, फिर से डाला, वो फिर से चले गए। ऐसे 16 बार हो गया दिन में, कई घंटे निकल गए। वो जाते थे स्नान करके आते ये गंदा पानी डाल, वो फिर जाते स्नान करके आते गंदा पानी। 16 बार डाल चुका, ये थक गया डालते डालते, शायद घर का कचरा खत्म हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन साधु कुछ नहीं, वो आते ही गाल मुस्कुराते चले जाते, फिर स्नान करके आ जाते। और जब इतना 16 बार कर गया, थक गया, घर में कुछ बचा नहीं, तो उसने अगली बार भी बकेट में से कुछ भरकर डालना था, बाल्टी भरकर, लेकिन इस बार फूल डाले उसने और साधु के चरण स्पर्श किए कि क्षमा कीजिए मैं तो हार गया, लेकिन मुझे बताइए कि आपके अंदर इतनी सहनशीलता है कैसे। हम लोग को सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सोचिए आपके साथ ऐसा हो तब क्या होगा, आप कितने हंसेंगे। अभी तो हम लोग सुन के हंस रहे हैं ना, 16 बार डाल दिया वो गए यार, आप कितनी बार हंसेंगे। एक बार केवल अगर कोई डाल दे, आप अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हैं ड्यूटी पर और क्वार्टर्स में नीचे से निकल रहे हैं और ऊपर के क्वार्टर्स से कोई आप जाएंगे, ठीक है, फिर से जाएंगे स्नान करेंगे, फिर से दूसरी यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर आएंगे, फिर से कोई डाल दे। दूसरी बार तो छोड़िए, पहली बार में ही वहां पर महाभारत शुरू हो जाएगी, राइट। और अगर आपके अधिकार में कुछ बंदूक वंदूक है तो सब निकल जाएगी उधर। तो तो उसे पूछा, ये 16 बार हो गया, आपने कैसे किया? तो उसने कहा, कौन सी सहनशीलता? आप अपना कार्य कर रहे थे, मैं अपना कार्य कर रहा था। आपका कार्य था गंदगी डालना, मेरा कार्य गंदगी धोना। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। उसने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, हर रोज मैं एक ही बार मंत्र का पाठ करता हूं स्नान करते समय। आज पहला दिन है मैंने 16 बार मंत्र का पाठ किया। धन्यवाद। देखिए ये सहनशीलता है। वो व्यक्ति उसमें भी अच्छी चीजें देख रहा है कि मैंने 16 बार आज मंत्र, क्योंकि हर बार स्नान करते हुए मंत्र पाठ करना पड़ता था। ब्राह्मण जो होते हैं स्नान करते समय मंत्र पाठ करते हैं, तो 16 बार बोले मैंने तो कभी नहीं किया, एक ही बार करता था, 2 बार करता था, इस बार 16 बार हो गया, तो आपकी कृपा है। तो ऐसे ये सहनशीलता ये आवश्यक है। वैसे जो सहनशीलता है ये प्रभुपाद लिखते हैं कि हम कितना क्षमा कर सकते हैं उसके ऊपर भी आधारित है। कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, जैसे भागवत में एक कथा है रंती देव की। रंती देव राजा थे, बहुत महान राजा, लेकिन कभी कोई लाकर देता था खाने के लिए तो खाते थे, नहीं तो उपवास रखते थे। एक दिन 48 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा और उसके बाद किसी ने लाकर उनको भोजन दिया, अच्छा दूध और घी में बना हुआ बढ़िया भोजन। अपने परिवार के साथ बैठे और खाने जा रहे थे। देखिए कितना, आप सोचिए, केवल देखिए नहीं, कल्पना कीजिए, आप अपने आप को रखिए उनकी जगह। 48 दिन से भूखे हैं, पहले तो आप रह ही नहीं पाओगे 48 दिन भूखे। आप 48 घंटे पकड़ लो, 48 मिनट तो पकड़ लो कम से कम, तो आप बहुत भूख लग रही है। 48 दिनों के बाद कितनी भूख लग रही होगी व्यक्ति को। हम लोग एक दिन उपवास रखते हैं ना जन्माष्टमी पर, सुबह से रात को 12 बजे तक घड़ियां देखना शुरू हो जाते हैं, कब 12 बजे, कब 12 बजे। 11:30 बजे मन में आता है अगर आधा घंटा पहले खा लिया तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे, खा लेना चाहिए, है ना। तो 48 दिनों के बाद अब भोजन आया उनके पास। अब वो भोजन खाने ही जा रहे थे, बैठे अपने परिवार के साथ बस खाने जा रहे थे, एक ब्राह्मण आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि बड़ी भूख लगी है, कुछ मिल जाता खाने को, तो ना अपना आधा भोजन दे दिया। अब जो बचा उसमें से बांटा परिवार के साथ। अब खाने ही जा रहे थे कि और एक शूद्र आ गया। अभी देखिए, ब्राह्मण को जब उन्होंने दिया ये सोचकर कि भगवान सब में वास करते हैं, अब शूद्र आ गया तो उसने भी मांगा, बहुत दिनों से खाया नहीं है, कुछ दे दो। ठीक है, जो था वो भी दे दिया, थोड़ा सा बचा, अब खाने जा रहे हैं। अब सोचिए, चलिए आप मानिए आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते हैं? आप सोचते कहीं कोना ढूंढता हूं जाकर, अब कोई भी आया अब कुछ नहीं दूंगा। तो रंती देव ने ऐसे नहीं सोचा कि थोड़ा कोना ढूंढता हूं कहीं जाकर, ये तो बहुत हो गया, अभी एक बार दो बार, अब तीसरी बार बिल्कुल नहीं दूंगा, अब कोई भी आए कान आंख बंद कर लूंगा, चुपचाप खाऊंगा कमरे में। नहीं, रंती देव फिर खा रहे हैं और कौन आया? एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ, ऐसे ही नीच व्यक्ति था, कुत्तों के साथ आया। बोलते मेरे कुत्तों ने कुछ खाया नहीं है बहुत दिनों से, थोड़ा उसको खाने को दे दीजिए। जब बताइए, मनुष्य तो ठीक थे, ब्राह्मण तो ठीक था, ये तो कुत्तों को। रंती देव ने दे दिया, ये ठीक है ले वो खाओ, सारा भोजन दे दिया। अब केवल पानी बचा था उनके पास। वो पानी पीने जा रहे थे कि एक चांडाल आ गया और चांडाल कहता, बड़ी प्यास लगी है, पानी तो पिला दो। तो रंती देव भगवान से कहते हैं कि ये इसको पानी पिला के मेरी सारी प्यास, मेरी सारी भूख मिटने वाली है, मुझे पता है। तो हे भगवान, वो प्रार्थना करते हैं रंती देव कि हे भगवान, इस जगत के लोगों का जितना भी कष्ट है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन इन सबको सुखी कीजिए, मैं यहां रहने तैयार हूं इनके कष्ट सहने के लिए, इनको सुखी कर दीजिए। और वो पानी भी दे देते हैं चंडाल को। आप सबने कल्पना की कि आप उनके स्थान पर होते, पहले ही तो इतनी भूख लगी है, कोई लाकर खाना दिया और आकर मांग रहा है, आप तो पहली बार देते कि नहीं ये बताइए, सच्ची सच्ची ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग पहली बार दे देते हैं? आप लोग सब ईमानदार हैं, कोई नहीं देगा पहली बार ही, कोई नहीं देगा, क्योंकि ब्राह्मण को बोलेंगे बाद में आना, देखेंगे बचा कुछ पूरा पेट भरने के बाद अगर कुछ बच गया तो देंगे, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बहुत भूख लगी है, दूसरी बार तो भूल ही जाइए, तीसरी बार तो उसको भगा देंगे दंडा मार के। रंती देव ने दे दिया। अफकोर्स ये सारे देवता थे, ब्रह्मा शिव इत्यादि जो परीक्षा ले रहे थे, फिर वो प्रकट हो गए। लेकिन ये सहनशीलता कि किस तरह उन्होंने इतना सहन किया, पहले तो भूख सहन की, तो ये सब कैसे हो सकता है? सहनशीलता व्यक्ति के अंदर कैसे आती है? ऐसे बहुत असंख्य अभी उदाहरण इतने सारे याद आ रहे हैं सहनशीलता के, शास्त्रों में चैतन्य लीला में उदाहरण है कहीं, तो अभी समय कम है, नहीं तो इतने उदाहरण है कि कैसे कैसे लोगों ने सहन किया। सहनशीलता है, जैसे हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको मारा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, किस लिए? हरिनाम छोड़ दो, बस हरिनाम छोड़ दो तुम्हें इनाम मिलेगा। अरे तुम मुसलमान हो, मुसलमान परिवार में जन्म लेकर ये हरे कृष्ण कहते हो, कलमा पढ़ना बंद कर दिया तुमने, बंद करो इसको, नहीं 22 बाजारों में मार मार कर इसको खत्म कर दो। हरिदास ठाकुर सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाव क्या था? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरे मुख से हरिनाम नहीं निकले, अरे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़े से हरिनाम निकलेगा, ये उनकी श्रद्धा थी। तो सहनशीलता अगर हमें अपने अंदर लानी है, पृथ्वी की तरह सहनशीलता, तो हमें पहले ज्ञान लेना चाहिए, हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार पर हम बड़ी आसानी से सहनशीलता को उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अच्छे चरित्र को बनाना चाहिए। अच्छा चरित्र अर्थात जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, इंद्रियों के वश में ना हो, तो ऐसे हम लोग भगवान की भक्ति करके, भगवान के नाम को लेकर, भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को समझकर बड़ी आसानी से सहनशील बन सकते हैं। तो ये पहले गुरु थे उस अवधूत ब्राह्मण के जो पृथ्वी थी। इसके आगे कई गुरु हैं, 24 गुरु हैं, धीरे धीरे उनका वर्णन करेंगे, बड़े महत्वपूर्ण और बड़े रोचक गुरु हैं। जैसे हमने बताया एक वैश्या से उन्होंने सीख लिया, एक तीर बनाने वाले से, एक पक्षी से, ऐसे एक राजा से। तो ये सारे गुरुओं का वर्णन आगे आने वाले रविवारों में धीरे धीरे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।